आज हम तीन बहुत ही सरल से लगने वाले लेकिन असल में बहुत गहरे विचारों पर बात करेंगे। मधुरता, स्वच्छता और सादगी। हमारे पास जो सामग्री है वो सिर्फ कुछ अच्छी आदतों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन और समाज बनाने के लिए एक पूरे दर्शन की तरह है।
बिल्कुल, इसे देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये एक मजबूत इंसान को परत दर परत बनाने का एक खाका है।
अच्छा।
हाँ, मतलब ये शुरू करता है कि हमारे अंदर से बाहर क्या निकलता है, हमारे शब्द, फिर ये हमारे आसपास के माहौल पर आता है, यानी हमारा घर, हमारा समाज,
और फिर
और आखिर में ये उस पर आता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हमारा पहनावा, हमारा रहन-सहन।
ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम अंदर से बाहर की ओर एक यात्रा करेंगे।
जी,
तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि ये तीन स्तंभ कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसमें टकराव कम हो और सार्थकता ज्यादा। तो पहली परत है मधुरता। शुरुआत इस विचार से होती है कि हमारा व्यवहार हमारे अंदर का आईना है, है ना? यहाँ एक बहुत सीधा लेकिन पावरफुल उदाहरण दिया गया है। जैसे शराब पीने वाले या ज्यादा लहसुन खाने वाले के मुंह से उसकी गंध छिपाई नहीं छिपती, वैसे ही मन की कड़वाहट और अहंकार वो असभ्य व्यवहार और कठोर शब्दों से बाहर झलक ही जाते हैं।
और ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं है, इसके बहुत व्यावहारिक परिणाम होते हैं। इस सामग्री का एक मुख्य तर्क ये है कि कठोर शब्द ऐसे घाव देते हैं जो शायद कभी नहीं भरते,
और वो स्थायी दुश्मन बना देते हैं।
बिल्कुल।
जो व्यक्ति रूखा व्यवहार करता है वो लगातार अपने लिए सामाजिक मुश्किलें खड़ी कर रहा होता है, अपने दोस्त कम कर रहा होता है और दुश्मन बढ़ा रहा होता है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में, खासकर कॉर्पोरेट जगत में, कई लोग मानते हैं कि थोड़ा सख्त और रूखा व्यवहार करना प्रोफेशनल या अथॉरिटेटिव दिखने के लिए जरूरी है।
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ जो दृष्टिकोण पेश किया गया है उसके अनुसार ऐसा व्यवहार अधिकार नहीं बल्कि उथलापन और ओछापन जाहिर करता है।
मतलब आत्मविश्वास की कमी। हाँ, ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास अपने विचारों को विनम्रता से रखने का आत्मविश्वास नहीं है। वो धाक जमाने की कोशिश में असल में समझदार लोगों की नजरों में अपना सम्मान खो देता है।
तो उसे घमंडी और हल्का समझा जाता है।
जी, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉस जैसा है।
बिल्कुल।
और इसका सबसे बड़ा नुकसान तब सामने आता है जब उस व्यक्ति को वाकई मदद की जरूरत पड़ती है।
अच्छा।
उस समय कोई भी दिल से उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, बल्कि जिन लोगों को उसने कभी अपमानित किया होता है वो उसकी मुसीबत पर मन ही मन खुश होते हैं।
तो असभ्य व्यवहार असल में एक सामाजिक और व्यक्तिगत हार है।
बिल्कुल।
तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है?
यही तो इसकी खूबसूरती है। रास्ता बहुत सीधा है, जिसमें ना पैसा खर्च होता है ना समय। जब भी किसी से मिलें, मुस्कुराकर मिलें, सद्भावना से मीठे वचन बोलें, अगर कोई मदद मांगे और आप कर सकते हैं तो जरूर करें, अगर नहीं कर सकते तो विनम्रता से अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
रूखा जवाब देने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं, झल्लाना या रूखा जवाब देना किसी भी हाल में सही नहीं है।
और ये बात मुझे बहुत गहराई तक छू गई कि इसे मनुष्यता की प्रथम परीक्षा कहा गया है। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, घर में बड़े जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं।
हाँ, ये तो पूरी पीढ़ी की जिम्मेदारी बन जाती है।
अगर घर का माहौल ही कड़वाहट भरा होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे।
सही बात है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम इस पहली और सबसे बुनियादी परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं तो फिर नैतिकता, सेवा और उदारता जैसी बड़ी और अगली परीक्षाओं के लिए हम तैयार कैसे हो सकते हैं। ये तो नींव का पत्थर है, अभाविक
अगला कदम लगता है। मेरा मतलब है स्वच्छता।
आपने इसे बहुत सही तरीके से जोड़ा है। देखिए, यहाँ स्वच्छता को सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं माना गया, बल्कि इसे चरित्र और आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है।
अच्छा।
हाँ, अस्वच्छता को आलस्य, लापरवाही और एक तरह से जीवन की अच्छी चीजों के प्रति अनादर का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति गंदा रहता है वो अनजाने में ये संदेश देता है कि उससे सौंदर्य, व्यवस्था और अनुशासन में कोई रुचि नहीं है।
और शायद इसीलिए गंदगी से एक स्वाभाविक घृणा का भाव पैदा होता है। मतलब कोई भी गंदे इंसान या गंदी जगह के पास नहीं रहना चाहता।
सही है।
यहाँ एक उदाहरण है जो मेरे दिमाग में अटक गया है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी वैसे ही पहुँचेगी जैसे तितली फूलों को खोजती हुई पहुँच जाती है।
वाह, ये सच में एक बहुत शक्तिशाली छवि है ना?
हाँ,
ये बीमारी को और एक निष्क्रिय जोखिम से एक सक्रिय शिकारी में बदल देता है जो गंदगी की तलाश में है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सामग्री में बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जिन्हें हम तीन स्तरों पर देख सकते हैं।
ठीक है, तो पहला स्तर क्या है?
पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता। इसमें रोज नहाना तो है ही, लेकिन मुंह की सफाई पर बहुत जोर है। खासकर रात को सोने से पहले दांत जरूर साफ करना। ये छोटी सी आदत दांतों की उम्र बढ़ाती है। साथ ही जो कपड़े शरीर से सीधे छूते हैं, जैसे बनियान या अंडरवेयर, उन्हें रोज धोना जरूरी है।
ये दिलचस्प है कि इसमें बाहरी और भीतरी कपड़ों में फर्क किया गया है। ये सिर्फ साफ दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरी निजी हाइजीन की बात है।
बिल्कुल, ये आत्मसम्मान से जुड़ा है। अब दूसरे स्तर पर आते हैं, घर की स्वच्छता।
ठीक है,
यहाँ दो चीजें मुख्य हैं, बर्तन और भोजन। बर्तनों को तुरंत साफ करने की सलाह दी गई है, ताकि उन पर चूहे, छिपकली, गंदगी ना फैलाएं, और खाने की चीजों को हमेशा ढक कर रखना। व्यवस्था,
हाँ, कि बिखरी हुई कीमती चीजें भी कूड़े जैसी लगती हैं।
बिल्कुल,
और ये एक मनोवैज्ञानिक बिंदु है। एक व्यवस्थित घर एक शांत और व्यवस्थित दिमाग को बढ़ावा देता है। ये बाहरी स्वच्छता को भीतरी शांति से जोड़ता है।
और तीसरा स्तर, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, सार्वजनिक स्वच्छता।
बिल्कुल, यहाँ पर जोर इस बात पर है कि ये सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
अच्छा,
गांवों के लिए तो बहुत ही सरल और असरदार उपाय सुझाए गए हैं, जैसे पेशाब के लिए सोखता गड्ढे बनाना और शौच के लिए बाहर जाते समय साथ में एक खुरपी ले जाने की आदत डालना, ताकि शौच के बाद उसे मिट्टी से ढक दिया जाए।
इन सब का बड़ा उद्देश्य सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है?
नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक फायदा है। बड़ा उद्देश्य आत्मा की पवित्रता तक पहुंचना है।
आत्मा की पवित्रता? हाँ, विचार ये है कि जब हमारा शरीर और हमारा परिवेश निर्मल, निरोगी और निश्चिंत होता है, तभी हमारी आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ सकती है। स्वच्छता को ईश्वर की बनाई इस सुंदर दुनिया का सम्मान करने का एक तरीका माना गया है।
तो हमने अपने शब्दों को साफ किया, अपने शरीर और घर को साफ किया। अब ये यात्रा की तीसरी और शायद आज के दौर में सबसे चुनौतीपूर्ण परत पर आती है, सादगी। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि आज की दुनिया तो दिखावे और पर्सनल ब्रांडिंग पर ही चलती है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और ये सामग्री इसी सोच को सीधी चुनौती देती है। यहाँ सादगी का मतलब गरीबी या पिछड़ापन नहीं है।
तो क्या है?
बल्कि इसका अर्थ है प्रामाणिकता और आत्मविश्वास। तर्क यह है कि सादा पहनावा व्यक्ति को ज्यादा भरोसेमंद और गहरा बनाता है। जो जितना ज्यादा भड़कीला दिखावा करता है, समझदार लोगों की नजर में उतना ही खोखला साबित होता है।
इसमें फैशन परस्ती को लेकर कुछ काफी कठोर बातें भी कही गई हैं, जैसे जेवर न लटकाना, नाखून होंठ न रंगना, और इसे मानसिक व्यभिचार तक कहा गया है।
हाँ,
ये एक बहुत ही मजबूत और शायद कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द है। क्या इसका मतलब है कि सजना संवरना अपने आप में गलत है?
जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे भी ये शब्द थोड़ा कठोर लगा, लेकिन इसके गहरे मतलब को समझना जरूरी है। यहाँ बात फैशन या सलीके से कपड़े पहनने के खिलाफ नहीं है।
तो बात नियत की है?
बिल्कुल, बात नियत की है। जब सजने संवरने का एकमात्र मकसद दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना हो, उनमें वासना जगाना हो, या सिर्फ बाहरी रूप से उन्हें प्रभावित करना हो, तो उसे एक तरह की वैचारिक बेईमानी या चालबाजी माना गया है।
मतलब आप जो है वो नहीं दिखा रहे, बल्कि एक मुखौटा पेश कर रहे हैं।
सही।
तो ये अपनी असलियत पर खड़े रहने और बाहरी सत्यापन की जरूरत न महसूस करने के बारे में है।
बिल्कुल, सादगी ये घोषणा है कि मैं जैसा हूँ काफी हूँ, मुझे अपनी कीमत साबित करने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में इस रास्ते को चुनना वाकई साहस का काम है।
इसीलिए शायद लेखक ऐसा करने वाले को बहादुर कहता है।
हाँ, क्योंकि वो भेड़ चाल को छोड़कर अपने विवेक का रास्ता चुन रहा है।
और इसका एक बहुत सीधा आर्थिक पहलू भी है। फिजूल खर्ची को रोकना एक तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने जैसा है।
जी हाँ, और एक देश के तौर पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। जब करोड़ों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हों, तब फैशन और दिखावे पर बेतहाशा खर्च करना एक तरह की सामाजिक असंवेदनशीलता भी है।
इस विचार की शक्ति को समझाने के लिए रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत सुंदर किस्सा दिया गया है।
हाँ, वो अद्भुत किस्सा है और सादगी के सार को पकड़ता है। डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार, जो उस समय के एक बड़े डॉक्टर थे, अपनी कार से गुजर रहे थे।
ठीक है।
उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आश्रम के बाहर एक व्यक्ति को सादे कपड़ों में शांत बैठे देखा। डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्रम का माली समझ लिया और गाड़ी से ही रौब से कहा, ए, मेरे लिए कुछ फूल तोड़कर लाओ।
और रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इतना बड़ा संत हूँ और ये मुझे माली समझ रहा है।
बिल्कुल नहीं, यही तो महानता की पहचान है। उन्होंने बड़ी खुशी और विनम्रता से फूल तोड़े और डॉक्टर साहब को दे दिए।
और डॉक्टर फूल लेके चले गए।
हाँ, अगले दिन जब वे परमहंस जी से मिलने आश्रम आए तो उन्हें देखकर सन्न रह गए। जिसे उन्होंने माली समझा था वो कोई और नहीं, स्वयं रामकृष्ण परमहंस थे। डॉक्टर साहब शर्म से पानी पानी हो गए।
ये किस्सा दिखाता है कि असली महानता में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। परमहंस जी की पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके भीतर की शांति और विनम्रता से थी।
बिल्कुल, सादगी ने उन्हें उस अपमानजनक स्थिति में भी शांत और मजबूत बनाए रखा। यही सादगी की शक्ति है। ये आपको अनावश्यक अहंकार, ईर्ष्या और असुरक्षा से बचाती है।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि मधुर वाणी, स्वच्छता और सादगी सिर्फ अलग अलग नैतिक मूल्य नहीं है।
नहीं,
ये एक सार्थक, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए व्यवहारिक तरीके हैं।
और इन सब का सार एक ही है, अवांछनीयता को अस्वीकार करना।
अवांछनीयता,
हाँ, चाहे वो हमारे शब्दों की कड़वाहट हो, हमारे घर और शरीर की गंदगी हो, या हमारे पहनावे का खोखला दिखावा हो, ये एक ज्यादा प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक सचेत चुनाव है।
हमारी चर्चा की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि ये एक मजबूत इंसान बनाने का खाका है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि मधुर व्यवहार मन की स्वच्छता है, साफ सफाई तन और परिवेश की स्वच्छता है, और सादगी वो विचारों और जीवन शैली की स्वच्छता है।
सही पकड़ा आपने। ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण स्वच्छता बनाते हैं। और याद कीजिए, श्रोत में कहा गया है कि सज्जनता यानी मधुर व्यवहार इंसानियत की पहली परीक्षा है, पहली, जिसके बाद नैतिकता, सेवा और उदारता जैसी अगली और ज्यादा कठिन परीक्षाएं आती हैं।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
हाँ,
कि अगर सज्जनता सिर्फ पहली परीक्षा है तो हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में, अपने घर में, अपने काम पर, अजनबियों के साथ इस पहली परीक्षा में भी कहाँ खड़े हैं, और क्या हम अगली और ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयार भी हैं?